प्रवास, नायिका से वियुक्त होकर नायक के अन्य देश में चले जाने को प्रवास कहा गया है। इसमें मलिनता, संताप, पांडुता, दौर्बल्य, अरुच, अधीरता, अस्थिरता, तन्मयता, उन्माद, मूर्छा आदि काम दशाएं देखी। गंभीर वियोग इस स्थिति में अधिक स्वाभाविक है। किसी के द्वारा संदेश भेजना और चित्रलेखन भी प्रवासजन्य वियोग की रूढ़ियां हैं। विहारी में इन समस्त रूढ़ियों को खोजा जा सकता है। उपर्युक्त काम दशाओं में प्रथम बार का संबंध शरीर से है तो शेष छह का मन से। प्रथम चार दशाओं का मूल प्रेरक भी मन ही है। उसकी प्रतिक्रिया शरीर पर उन रूपों में होती है। नीचे कुछ दशाओं का उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। संताप, आड़े दय आले बसन, जाड़े हूँ की रात, साहस ककय स्नेह बस, सखी सबय ढिक जात। दो, औंधाई सीसी सुलख, बिरह बरन बिललात, बिचही सूखी गुलाब गो, छींटव छुई नगात। तीन, जिह निदाघ दुपहर रहे, भई माह की रात, तिह उसीर की रावटी, खरी आवटी जात। जायसी ग्रंथावली की भूमिका में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के वियोग पक्ष का विवेचन करते हुए लिखा है, जायसी का विरह वर्णन कहीं कहीं अत्युक्तिपूर्ण होने पर भी मजाक की हद तक नहीं पहुंच पाया है, उसमें गांभीर्य बना हुआ है। इनकी उक्तियां बात की करामात नहीं जान पड़ती, हृदय की तीव्र वेदना के शब्द संकेत प्रतीत होते हैं। उनके अंतर्गत जिन पदार्थों का उल्लेख होता है वे हृदयस्थ ताप की अनुभूति का आभास देने वाले होते हैं, बाहर बाहर से ताप की मात्रा नापने वाले मानदंड नहीं। जाड़े के दिनों में भी पड़ोसियों तक पहुंच उन्हें बेचैन करने वाले, बोतल का गुलाब जल सुखा डालने वाले ताप से कम ताप जायसी का नहीं है, पर उन्होंने उसके वेदनात्मक अंश पर जितना दृष्टि रखी है उतनी उसकी बाहरी नाप जोख पर नहीं, जो प्रायः उहात्मक हुआ करती है। इस उद्धरण में जितने निषेधात्मक वाक्य हैं वे सब बिहारी को दृष्टि में रख कर लिखे गए हैं, उनके संताप वर्णन को लक्ष्य करके। तात्पर्य यह है कि बिहारी का संताप वर्णन मात्रा मूलक है, वह नाप जोख की पद्धति पर आधारित और उहात्मक है। दौर्बल्य, एक, करी विरह ऐसी तऊ, गैल छाड़त नीच, दीने हूँ चश्मा चखनी, चाहे लहे नमीच। दो, इत आवत चली जाति उत, चली छसातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सैं रहे, लगी उसासनु साथ। तीन, नायक न जानी परतियों, परे विरह तन छाम, उठत दियालौ नादि हरि, लिये तिहारो नाम। जिस तरह संताप वर्णन में कवि की दृष्टि ताप की मात्रा पर रही है, उसी तरह इस प्रसंग में भी उसकी दृष्टि शारीरिक दुर्बलता और आत्यंतिक क्षीणता पर रही है। कार्श का यह रूप भी काया की लघुता पर आधारित है, हृदयगत संवेदना पर नहीं। अस्थिरता का एक उदाहरण पूर्वानुराग के प्रसंग में दिया जा चुका है। तन्मयता आदि, तन्मयता, उन्माद और मरण के एक एक उदाहरण देखिए। पिए के ध्यान गही गही, रही वह फय नारी, आप ही आरसी, लखरी छतरी छवारी। तन्मयता, बिरह जरी लख जोग ननी, कही न उही कै बार, अरी आव भज भीतरे, बरसत आज अंगार। उन्माद, कहा कहौ वाकी दशा, हर प्राणन के ईस, बिरह ज्वाल जरिबो लखें, मरिबो भयो असीस। मरण, विरह के उद्दीपन, जो वस्तुएं संभोग में सुखानुभूत जगाती रहती हैं वे ही वियोग में दुखानुभूत जगाने का कार्य करती हैं। काव्य में इनका वर्णन कवि परंपरा से करते आए हैं, बिहारी की युक्तियां भी परंपरा के ही मेल में हैं। एक, औरे भांति भये बये, चौसर चंदन चंद, पति बिन अति पारत विपति, मारत मारुत नंद। दो, हौ ही बौरी बिरह बस, कै बौरो सब गांव, कहा जानी एक कहत हैं, ससी ही सीत कर नाव। विरह वर्णन के कुछ काव्योचित स्थल। समस्त परंपराओं के पालन के बावजूद बिहारी के विरह वर्णन में कुछ ऐसे स्थल जरूर हैं जो उनकी श्रेष्ठ काव्य प्रतिभा के द्योतक हैं। विरह वर्णन हो क्यों, संयोग और सौंदर्य वर्णन के सिलसिले में भी उसे देखा जा सकता है। इस तरह के दोहों के कुछ उदाहरण देखिए। एक, अजौन आए सहज रंग बिरह दूबरे गात, अब ही कहा चलायत ललन चलन की बात। दो, यद्यपि तेज राहौल बल पलकों लगी न बार, तव ग्वंडो घर कौ भयो पैंडो कोस हजार। तीन, जहाँ जहाँ ठाढ़ो लख्यो श्याम सुभग सिर मौर, उन्हों बिन छिन गहि रहत त्रिगनि अजौ वह ठौर। चार, श्याम सुरति कर राधिका तकति तरन जा तीर, असुवन करति तरौंस को खिनक खरौ हौ नीर। पाँच, कर के मीड़े कुसुम लौं गई बिरह कुम्हिलाय, सदा समीपिन सखिन हूँ नेठ पिछानी जाय। इन दोहों में वे कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो इन्हें श्रेष्ठ काव्य में परिगणित करती हैं? यह प्रश्न स्वयं इन दोहों के लिए उतना ही महत्व नहीं रखता जितना मूल्यांकन की समस्या के लिए रखता है। यह कहा जा सकता है कि ये उक्तियाँ न तो ऊहात्मक हैं, न बाहरी नाकपोक से इनका संबंध है। शारीरिक कार्य का तनुतापरक वर्णन भी इनमें नहीं है, पर ये निषेधात्मक कथन तो अपने आप में काव्य के गुण नहीं हैं। कुछ लोग निश्चयात्मक कोष्ठ में पॉजिटिव ढंग से कहना चाहें तो कह सकते हैं कि कथन की स्वाभाविकता और मनोवैज्ञानिकता के कारण इन दोहों को श्रेष्ठ माना जा सकता है, किंतु स्वाभाविकता और मनोवैज्ञानिकता जैसे गोल शब्द इनके काव्यात्मक सौंदर्य के मापक नहीं हो सकते। वास्तव में इन दोहों की श्रेष्ठता यथार्थ की काव्यात्मक पकड़ में निहित है। यथार्थ की जो पकड़ संताप दौर्बल्य प्रदर्शक दोहों में दिखाई पड़ती है वह अस्वाभाविक और मात्र भौतिक कोष्ठ में फिजिकल है। इसलिए उनकी भाव व्यंजनाएँ बाह्यता परक हैं जो संवेद्य नहीं हो पाती। मानसिक यथार्थ का संबंध हमारी संवेदनाओं और सुख दुखात्मक अनुभूतियों से होता है। भौतिक यथार्थ का अपने आप में महत्व है, बशर्ते वह मानसिक यथार्थ को उसके वास्तविक संबंधों में व्यक्त कर सके। औंधाई शीशी वाले दोहे को लीजिए। शीशी का औंधाना भौतिक यथार्थ है, पर ताप से उसका जो संबंध स्थापित किया गया है वह बड़ा ही लचर और मूल्यहीन हो गया है। दूसरे शब्दों में वह संबंध अवास्तविक और मिथ्या है। वैयक्तिक दृष्टि से उसका चमत्कारिक महत्व हो सकता है, पर वह सार्वजनीन दृष्टि से सहृदय संवेद्य नहीं हो सकता। इसलिए आचार्यों ने काव्य में वैयक्तिकता का निषेध किया है। टीएस इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत भी इसी बात की पुष्टि करता है। काव्य में निजी अनुभूतियाँ और विचार अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करते हैं। रोमांटिक काव्य को लेकर इस पर तरह तरह की मान्यताएं प्रस्तुत की गई हैं। इस सिलसिले में इस बात का विचार नहीं किया गया कि चमत्कारिता के करिश्मे भी व्यक्तित्व से ही संबद्ध रहते हैं, निर्व्यक्तित्व से नहीं। बिहारी जहां पर्याप्त निर्वैयक्तिक हुए हैं वहाँ उनका काव्य श्रेष्ठता के धरातल पर पहुँच गया है। संतोष और दौर्बल्य परक दोहों तथा उपरिउद्धृत दोहों में एक अंतर और है। पहले प्रकार के दोहे में जिस सत्य की अभिव्यक्ति की गई है वह व्यंजित सत्य को इस तरह ढक लेता है कि उसकी पूर्ण व्यंजना नहीं हो पाती। काव्य में जो कुछ व्यक्त किया जाता है वह वैज्ञानिक सत्य की तरह खंड सत्य नहीं होता, प्रत्युत पूर्ण सत्य होता है। उसकी व्यंजना आगे बढ़कर कथ्य को पूर्णता प्रदान करती है। परवर्ती दोहों का कथ्य अधिक पूर्ण और व्यंजक है। यही नहीं, उनमें व्यक्त संवेदनाएं अपेक्षाकृत कहीं अधिक गूढ़ और सूक्ष्म हैं। पहला ही दोहा लीजिए, नायक के विदेश जाने का प्रसंग है। सखी कहती है कि अभी तो प्रथम योग से दुखित नायिका के अंगों में स्वाभाविक रंग तक नहीं आया। यह प्रथम योग के क्लेश को ही अभिव्यक्त करके नहीं रह जाता, बल्कि इससे प्रथम योग का पूरा दुखात्मक वातावरण व्यंजित हो उठता है। इतना ही नहीं, इस वियोग में तो बेचारी की वह दशा हुई, पता नहीं इस वियोग में क्या होगा। प्रथम वियोग से दुर्बल शरीर और उसके रंग, कुष्ठ में पांडुता आदि से विरह पूरी अभिव्यक्ति पा जाता है। दूसरे दोहे में काव्य की नींव गहरी मनोवैज्ञानिक वास्तविकता पर टिकी है। नायक अत्यंत तीव्रगामी घोड़े पर सवार है, अतः उसे प्रिय के साथ पहुंचने में तनिक भी विलंब नहीं लगा। किंतु ग्वैंडे का रास्ता हजार कोस दूर मालूम पड़ने लगा। सापेक्षवाद के सिद्धांत से परिचित लोगों को इसकी स्वाभाविकता में किसी तरह का संदेह नहीं हो सकता। मानसिक सत्य को भौतिक सत्य से इस तरह बांधा गया है कि उसकी अस्वाभाविकता खलने के स्थान पर अच्छी लगती है। चौथा दोहा अत्यधिक मार्मिक है। शास्त्रीय शब्दावली में यह स्मृति संचारी कहा जाएगा। श्याम और यमुना तट का कितना गहरा संबंध है, इसी को विचारानुषंग एसोसिएशन ऑफ आइडियाज कहते हैं। यमुना तट पता नहीं कितने संदर्भों और अनुभूतियों को जागृत करने में समर्थ है। श्याम की स्मृति आते ही राधिका का यमुना तट की ओर देखना सहज है। यमुना तट का जल क्षण भर को खारा हो जाता है। सारी संवेदना का यह परिणाम इसको अत्यंत गहन और प्रगाढ़ बना देता है कि सब मिलकर वे अत्यधिक मर्मस्पर्शी बन गए हैं। यही बात अंतिम दोहे के संबंध में भी कही जा सकती है। इस दोहे का मर्म करके मीड़े कुसुमलों में निहित है। इसका बिंब इतना संवेदनशील है कि विरह वेदना अपनी पूर्णता में व्यक्त हो उठती है।